ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकैः।
श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद के 27वां अध्याय श्लोक क्रमांक 10। तेषु तेषु तदरिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यता। तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यता। तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत। तेषु तदरिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत।
शब्दानुवाद। तेषु उनमें तदरिक्तहारेषु इस धन के लुटेरों में गृह घर कोश खजाना अनुजीविषु सेवकों के लिए निरूढ़ेन गहरी ममत्वेन आसक्ति से विषयेषु विषयों में अन्वबध्यता बद्ध हो गया। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के धन के लूटने वाले थे, जिसमें उनका घर खजाना नौकर सचिव तथा अन्य साज सामान सम्मिलित थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ ममता थी। मेरे पीछे दोहराओगे? ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के धन को लूटने वाले थे, जिसमें उनका घर खजाना नौकर सचिव तथा अन्य साज सामान सम्मिलित थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं में प्रगाढ़ ममता थी। तात्पर्य, इस श्लोक में रिक्त हरेषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है धन को लूटने वाले। किसी के भी पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज अंततः उसके संचित संपत्ति के लुटेरे ही होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो अनंत संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफ़ी प्रतिष्ठा रहती है, परंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों तथा पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। क्या हो गया? हमने भारत में एक ऐसा व्यापारी को देखा है जो राजा पुरंजन की तरह अत्यंत विषयी था और जिसके पास कम से कम आधा दर्जन पत्नियां थी। आधा दर्जन कितना है? 6। इन पत्नियों में से हर एक का पृथक प्रबंध था जिसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। खैर, मेरे को लगता है कि प्रभुपाद जी उस जमाने की बात कर रहे हैं। आज का जमाना होता तो लाखों की बात होती, हजारों को तो कोई पूछता नहीं है। हैं? नहीं, एक एक पत्नी के ऊपर लाखों रुपया खर्च होता था। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि वो अपने प्रत्येक पुत्र तथा पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुटाने के लिए प्रयत्नशील था। ये प्रभुपाद जी के समय की बात है। उस समय का 5 लाख अभी कितना होगा? 10 लाख? किसने कहा 10 लाख? अरे भाई, 10 साल पहले सोने का भाव था 5,000, आज 30,000। उस समय की बातें हिसाब किताब करो। इस तरह ऐसे उद्योगपति व्यापारी प्रयत्नशील था। इस तरह ऐसे उद्योगपति व्यापारी या कर्मी मूढ़ कहे जाते हैं। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें उनको सुख मिलता है और इसी में सुख पाते हैं कि पुत्र तथा पौत्र उस धन को लूटें। ऐसे लोग अपने संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। समस्त संपत्ति का असली भोक्ता तो परमेश्वर है। तथाकथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार तथा उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनते रहते हैं। इसी धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पौत्रों द्वारा लूटता देखकर उन्हें आनंद होता है। यह जीवन की भौतिकवादी शैली है। पौत्र समझते हैं ना? पुत्र नहीं है, बेटे का बेटा है। हाँ, नाती है, नाती ना पोता कहते हैं, पोता पोता होता है, नाती तो उसका। हाँ, ये पोता है। ठीक ठीक से समझ लेना चाहिए। यह जीवन की भौतिकवादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। इसी प्रकार वह सोचता है, मैंने पहन के रखा है, इसी प्रकार वह सोचता है, मैं यह शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमेरिकी या भारतीय हूँ। यह देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार, राष्ट्र, समुदाय से अपने को एकाकार समझता है। इसी प्रकार भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। फिर जीव के लिए इस बंधन से निकल पाना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13, 14, 15 श्लोकों में हुआ है। इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्ष्ये मनोरथम, इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, असौ मया हतः शत्रुर्हनिषि चापरानपि, ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, जक्षी दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। आसुरी पुरुष सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, कल तक इतना जोड़ लूंगा, इस समय मेरी संपत्ति इतनी है और भविष्य में बढ़कर इतनी हो जाएगी। यह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। वाह रे मैं शक्तिमान हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और अपने परिजनों से घिरा हुआ हूँ। मेरे समान अन्य कोई भी व्यक्ति इतना सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रमसाध्य कार्यों में लगे रहते हैं और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र आदि के प्रति इनकी आसक्ति गहराती जाती है। हरे कृष्णा। तेषु तदरिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्नबध्यता। ये सब हमारी ही बात है, जो बात लिखी गई है वो प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक भौतिकवादी जीवन में ये घटनाएं देखने को मिलती है। कोई नई बात नहीं है। परिवार के प्रति आसक्ति बहुत तेज है। केवल ये भौतिकवादी नहीं है, भक्तों में भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि तुम अच्छे भक्त हो और जो धनवान भक्त हैं वो अपने पैसा तुमको दे देता है, क्योंकि वो स्वभाव धीरे धीरे बदलेगा। अभी तो हम भक्ति में आए हैं, वही स्वभाव लेके ही आए हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ी तकनीकी अप्लाई किया है कि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर को जाती है, सदैव दृष्टि हमारी बाहर की ओर है। अपनी बात हम सोच नहीं पाते, अपने ऊपर कानून को लगाने में हम असमर्थ रहते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति करता है, हम भी थोड़ा थोड़ा वही करते हैं। तद रिक्त हारेशु, उस पुरंजन की आसक्ति कहाँ थी? हम जो पुरंजन है, हम जो जीवात्माएं हैं, हमारी आसक्ति कहाँ है, किस किस जगह में है? ध्यान देना चाहिए, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है। वैसे तो अगर व्याकरण से देखा जाए, इस भागवत में तीनों लिंग आ जाते हैं। ये पुरुष में भागवत ग्रंथ है नहीं, और नपुंसक लिंग में भागवत पुराणम, इदम पुराणम, और स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, भागवती कथा। जो भी हो, ये तीनों के लिए है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य है जीव को भवबंधन से मुक्त दिलाना, इतना तो पक्का है, स्पष्ट है। चैतन्य महाप्रभु ने जो पांच साधन दिया है उनमें से भागवत को भी स्थान दिया है, भागवत श्रवण। सब भक्ति का अर्थ होता है भगवान की चरण सेवा प्राप्त करना, भगवान के साथ अपना पुनर्संबंध को स्थापित करना, भौतिकता को समाप्त कर देना। ये तो भागवत का लक्ष्य है, ये सब भक्त लोग जानते हैं। सो आज जो बात कही जा रही है, इसमें बंधन की बात कही जा रही है। ये बंधन हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों जानेंगे, कहां कहां हमारा बंधन हो रहा है, किस प्रकार से बंधन हो रहा है, उस बंधन से हमको आनंद मिलता है या बंधन से हमको छटपटाहट होती है। जब किसी जीव को आप कैद करके रखते हो, वो छटपटाहट उसमें होती है। कारागार में भोजन मिलता है, कारागार भी एक प्रकार का निवास है, उस पर भी छत है, वहां पे भी टीवी लगी हुई है, वहां पर भी मनोरंजन की काफी सामग्रियां हैं, लेकिन कोई भी काराकक्ष में जाना नहीं चाहता, नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता? उसमें स्वतंत्रता नहीं है, उसमें बंधन है, एकदम बंधन है। वो जेलर जो कहेगा सो करने के लिए वो कैदी मजबूर है, करना ही पड़ता है। इसलिए बंधन अच्छा नहीं लगता, वहां कोई सुखचैन में रहने के लिए नहीं जाता, वो चाहता है कि कब डेट आएगी और हम यहां से छूटेंगे। सो वहां तो एक प्रकार का बंधन है, वहां हम वो बंधन हमको तड़पाता है। लेकिन और एक प्रकार का बंधन है मेरे मित्रों, जिस बंधन के बारे में हम पढ़ रहेंगे, अभी पढ़े हैं, अब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उस बंधन में छटपटाहट नहीं है, वो बंधन एक मीठा बंधन है, और उस बंधन को बांधने के लिए ढोल बजते हैं। उस बंधन को बांधने के लिए ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, सहनाई बजती है। ये एक अजीब प्रकार का बंधन है, और इस बंधन में व्यक्ति को सुख अनुभव होता है। वो अंततः कहता है हमारे जैसे सुखी कोई नहीं, और हे भयंकर बंधन, रहिमन ब्याह व्याधि है, शको तो रहियो बचायो, पावन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा करके बेड़ियां डलती है, और उसके बाद कितना सुख है, तोतली तोतली बोली है, मीठी मीठी बातें हैं। कथम प्रियायाः अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम समंत्रान, ये सारे बंधन है, लेकिन मीठे मीठे बंधन है। जीवात्मा इतना इतने बेसुध होकर के पड़ा है, ये बंधन हमारे में है, ये महसूस तक होने नहीं दे रहा है, ये मीठा है। पत्नी का बंधन पहली बार इसमें, तेसु उनमें बंधन है, किसमें, पत्नी में। उसके बाद तद रिक्त हारेशु, जो धन लूटने वाले हैं, उधर देखो, ये सब सप्तम विभक्ति का प्रयोग, किसमें, वो बंधन का आधार क्या है, देखो सप्तमी विभक्ति का सबके सब में प्रयोग हुआ है। आधारो अधिकरणम, जिस आधार पर बंधन टिकता है वो बंधन का आधार है, जिस पर ममता टिकती है वो ममता का आधार है, जिस पर वस्तु टिकती है वो वस्तु का आधार है। तो हमारा बंधन कहां पे टिका हुआ है, मैंने पहले ही कहा भागवत के प्रत्येक शब्द बंधन से मुक्त करने के लिए, हमारे बंधन को टुकड़ा टुकड़ा करके काट करके फेंकने के लिए है प्रत्येक शब्द। और जो योद्धा है वो यदि बंधन के स्थान को नहीं जानेगा तो काटेगा कहां, ये बात समझ में आ रही। अगर सेनापति सेना लेकर के युद्ध करने के लिए जाएगा और सेना के ठिकानों को नहीं जानता है तो किस पर आक्रमण करेगा। इसलिए प्रत्येक साधक एक योद्धा है। प्रभुपाद जी कहते हैं माया के विरुद्ध में एकदम ताकतवर लड़ाई है, पूरी जोश के साथ सेना लड़ने के लिए तैयार हो तब वो जीत सकती है। सो बंधन के बंधन कहां है, वो लड़ेगा तो मैदान में लड़ेगा, उसके उसका दुश्मन किधर है। इसलिए भजन के साथ साथ ये बात समझाई जाती है, तेसु उनमें बंधन है, ये बंधन का आधार है। कौन है, पत्नी अथवा अपना देह, ये अध्यात्म पक्ष में हम बाद में विचार करेंगे, पर मोटी बुद्धि से मोटी अकल में हम समझ सकते हैं कि वहां ही जो बंधन है, सबसे पहला बंधन है हमारा शरीर है, सबसे पहला बंधन है। याज्ञवल्क जी अपनी पत्नी से कहते हैं, नवा अरे पत्नी ही पत्नी हो कामाय प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय प्रिया भवती। पत्नी पत्नी के लिए अच्छे नहीं लगती है, पत्नी अपने लिए अच्छी लगती है। इस संसार में वो कई सारी बातें वो उपनिषद में लिखी गई है। ये संसार में जितने सुख के साधन है वो अपने लिए ही अच्छे लगते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं लगते हमें। इसलिए हमारे बंधन कहाँ कहाँ है, अपने देह में है। देह से बढ़ करके देह को जहां जहां सुख मिलता है वहां पर बंधन है। तेसु तद रिक्त हारेशु, रिक्त माने धन, रिक्त माने संपत्ति, और उस रिक्त को जो हरण करता है उसका नाम है रिक्त हार। रिक्त हार उसमें लिखा है ना, तद रिक्त हारेशु। तो रिक्त हारेशु तब शब्द बनेगा जब ये शब्द बनेगा तद रिक्त हार, जो हरण करने वाला है। हरण करने वाला एक नहीं, हरण करने वाले कितने, हरण करने वाले हैं, देह तुम्हारी संपत्ति को हरण करती है, ठीक है ना, नहीं करती। और देह के बाद पत्नी, पत्नी भी संपत्ति का हरण करती है, फिर अपने पुत्र, फिर अपने पौत्र, फिर अपने उसके बाद प्रपौत्र, पोता पोते का बेटा, ये सारे, और उनको खिलाने पिलाने में आदमी को क्या मजा आता है, वो अपने को बहुत सुखी महसूस करता है। प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो व्यापारी था, वो सोचता था उसकी छह पत्नियां, छह पत्नियों के लिए कितना इंतजाम वो किया होगा, छह महल तो बनाए होंगे, छहों के लिए एक अलग अलग व्यवस्था, एक साथ रहेंगे झगड़ा करेंगे, इसलिए प्रत्येक स्त्री के लिए अलग अलग महल है, और उनके बच्चे होंगे, और उनको चिंता थी कि हर बच्चे के लिए मुझे 5,00,000 रुपए जुटाना है, और पूरी जिंदगी वो उस जुटाने में लगा दी। इसी को कहते हैं रिक्त हार, मीठे मीठे मीठी मीठी बात बोल करके अब वो ले गए, हरण कर लिए, शोषण कर दिए, सब कुछ ले गए, और व्यक्ति बड़ी मस्ती से एकदम सीना तान करके दे दिया, वाह 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 हमारे बच्चे हैं, अब हमने सारा इंतजाम कर दिया उनके लिए, मैंने अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक से पालन किया। तुम लोग साधु, तुम कायर हो, तुम भगोड़े हो, भाग जाते हो, तुम पागल हो, इस तरह से उंगली दिखा कर कहते हैं। पर दुख है उनको, पता नहीं कि वो स्वयं पागल है, स्वयं पागल है। यही तो दुनिया का नियम है ना, साधु उनको उंगली दिखाएगा, वो उधर को दिखाएंगे, दोनों में पागलपन है। भागवत के अन्यत्र कहीं लिखा हुआ है, ये जंगल में, ये जन्म मृत्यु भवाटवी में, ये पत्नी और बच्चे ये सब भेड़िया है, भेड़िया गीदड़ हाइना, ये सब मांस के टुकड़ा नोचने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं रात्रि के समय भेड़िया सीआर ये हुआ हुआ करते हैं, दे आर क्राइंग एट नाइट, किस लिए, कि तुम्हारे घर पे जो भेड़ है, तुम्हारे घर में जो बकरे के बच्चे हैं, तुम्हारे घर पे जो भी पशु हैं छोटे छोटे, उनको छीनने के लिए रोते हैं। तुम्हारी सावधानी हटी दुर्घटना, हाँ, जैसे तुम्हारी सावधानी हटी तो तुरंत आए और छीन करके ले गए। तो भेड़िया जैसे रोते हैं, वो हाइना जैसे चिल्लाते हैं, वो सियार जैसे ही वो शिकार को पकड़ने के लिए चिल्लाते हैं, ऐसा ही तुम्हारी पत्नी मीठी मीठी स्वर में कहती है, माय डार्लिंग प्लीज गिव मी, दो ना, क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हो, क्यों इतनी कंजूसी, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है यार, दे दो ना, देखो ना वो बनारसी साड़ी पहनी है, हमको तो 1,00,000 दे दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूं। तुरंत फ्लाइट टिकट करी और बनारस जाके साड़ी लेके आ गई, एक साड़ी के पीछे 10,000-20,000 रुपये उसने खर्च कर दिया। ये जो मीठा मीठा रोना है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी ने लिखा है, द क्राइंग, द स्टाइल ऑफ क्राइंग, वो भेड़िया रोता है और ये भी रोता है, ये भी रोती है, पर इनका रोना में बड़ा आनंद आता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। आपको आता था क्या? ये सुनने में बड़ा मीठा होता है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरान समंत्रान। प्रहलाद महाराज कहते हैं वो मंत्र तो दीक्षा देती है पर वो मंत्र गुरु मंत्र जैसे कड़वा नहीं है, वो रुचिरांश मंत्रान, वो मंत्र इतना मीठा लगता है कान में, व्यक्ति दीक्षा का मंत्र भुला देता है। 16 माला भले ही पीछे हो लेकिन ये देवी जी का मंत्र पहले। संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। अच्छा ठीक है, वो हाई ना बच्चे जो है वो कहेंगे पापा हमको जीन चाहिए ना, के रुपए 5,000, कोई बात नहीं ले, पूरा पैसा लूट देता है। कईयों का अनुभव होगा, इतने लोग अभी भी कई लोग करते हैं, मैंने देखा कई भक्तों के घर में भी डोनेशन बिल्कुल मंदिर को नहीं देते, बिल्कुल नहीं, और घर में आलीशान मकान विशाल। ये भी यही बात, प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ तो आसक्त है ही है पर कभी कभी सन्यासी भी आसक्त होता है, मकान मंजिल आईफोन। ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, यस्यात्म बुद्धि कुण पेत्र धातु के सुधि कलत्रादिशु भौमे इज्जत ही जतीर्थ बुद्धि सलीले न करिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरः। कहने में तो लगता है क्या है इसमें, मल है मूत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईफोन को टुकड़ा टुकड़ा करके किसी भक्त को लेके दे दो, वो कहोगे यही तो था, इसको ले लिक्विड ब्यूटी, रखो उसको बाहर। लेकिन जब उसको मैकेनिक बना करके देता है ना, उसको जेब में रखता है, हृदय में बिल्कुल रखता है, वहां पर बुद्धि कहां जाती है? जस्यात्म बुद्धि कुण पित्र धातु के। अरे भाई वो आईफोन भी तो एक कुणप है, कम से कम हमारे पेट में मलमूत्र है वो किसी का भोजन है, कुत्ता उसको भोजन करता है, लेकिन तुम्हारे प्लास्टिक टुकड़ा किस काम की आएगी? इसलिए भागवत हमें सूक्ष्म दर्शन दिलाती है, दृश्यते अग्रया बुद्ध्या, सूक्ष्म बुद्धि से ही उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपजान्ति ते, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के। सबसे बड़ा मोह तो शरीर बंधन तो यहीं पर है, इस शरीर में है। केवल कई लोग मैंने देखा इस सेट में बैठ करके हमेशा वो स्त्रियों को गाली गुलज, जस्य आत्मा बुद्धि कुण पैतृ धातु। अरे भाई तेरे भीतर भी तो कुण पे है, ये जो थैला ये रमाकांत दास बैठा है इधर, इसमें क्या है? वही तो है, यही तो है, पर हमारी माँ वो भी तो जस्यात्म, वो भी तो मलमूत्र की थैली है, हमारे पिताजी सभी तो वही है। नहीं, भगवान ने उसको इस ढंग से बनाया है, वो इतना उसमें इतने करिश्मा है, वो चीज जब ठीक ठीक से बन जाती है ना, वो जीव को अट्रैक्ट कर देता है, वो प्रकृति की खासियत है, वो भगवान का अनंत सौंदर्य में से एक टुकड़ा है। इसलिए हमको देखना चाहिए वो आसक्ति का मूल कारण है हमारे शरीर है, ये कुणप है, ये त्रिधातु है, कफवित बात है, यहां पर बंधन का मूल तेसु प्रथम बंधन है यहां पर। और दूसरी बात है, मान लीजिए धन भी कमाया, उस कमाने वाले धन को कमाई हुई चीजों को ये सब हरने लगे, पहले शरीर हरण करता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है मेरे मित्रों। आप अपने शरीर को पहले देखते हो, हम भी देखते हैं तुम भी देखते हो पक्का। एक बार किसी को वो अकबर को समझ में नहीं आया, बिरबल से पूछा कि सबसे बड़ी आसक्ति का कारण क्या है? ना शरीर है। बोले नहीं, कभी बार देखा जाता है लोग बच्चों के लिए जीते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जहाँ अपना एक बार परीक्षा करके हम दिखा देंगे। उन्होंने क्या किया, एक सूखा तालाब उसके बीच में एक बांस गाड़ दिया, उसमें एक बंदरिया को बुला करके बिठाया, एक बंदरिया उसका एक बच्चा था और उसको वहीं पे बांध दिया, पर डोरी लंबी थी। महाराज से कहा कि इसमें पानी भरवा दिया जाए, पानियों का स्रोत, पानी का वो स्तर बढ़ने लगा। जैसे बंदरिया ने देखा कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसने क्या किया, वो धीरे धीरे उस बांस को पकड़ करके ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते उस बांस के छोर तक, सीमा तक पहुंच गया। बंदरिया ने फिर भी उस बच्चे को पकड़ रखा था, लेकिन जब देखा कि स्तर और बढ़ा और कोई उपाय नहीं, उसने बच्चे को फेंका और तैर करके चली गई। बीरबल ने कहा जहां अपना देखिए मैंने जो कहा था। तो सबसे बड़ी आसक्ति का कारण और जड़ है हमारा शरीर, फिर उसके साथ ये सब तुलना है कि भाई पत्नी है, बच्चे हैं, तद रिक्त हारेशु, इनमें बंधन हो जाता है। तो बंधन के गढ़ जो है, ध्यान देना चाहिए, हमारा शरीर और हमारा परिवार, गृह कोषानु जीविसु, और घर के जो धन धान्य है उसमें जो जीवित रहते हैं, जो निर्वाह करते हैं, जैसे हमारे नौकर चाकर, उनमें भी आसक्ति आ जाती है। देखा जाता है नौकर से भी बड़ा व्यक्ति आसक्ति होता है, अच्छा नौकर है तो उसका देखभाल करता है, उसका पेंशन है, मैंने देखा। हमारी बहन की एक दुकान है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस दुकान में एक लड़का काम करता था, उसका नाम है भीम। अब हो गए 20-30 साल हो गए, अभी भी मैं गया था देखा वो काम कर रहा है, उसको पेंशन देंगे। कितनी आसक्ति है नौकर के प्रति, आसक्ति देखा भी जाता है स्वाभाविक। सो पुरंजन को समझा, प्राचीन भरी को समझाते हुए नारद जी कहते हैं, तेसु तदरिक्त हारेशु गृह कोषानुजीविषु निरूढ़ेन ममत्वेन विषयेषु अनुबध्यत। निरूढ़ हम माने नितराम रूढ़ भावा, रूढ़ माने चढ़ा हुआ है, गीता में रूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। आरुरुक्ष मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। योग पे जिसने आरूढ़ हो गया है, चढ़ गया है, बैठ गया है रूढ़, निरूढ़ माने दिन पर दिन, दिन रात वो ममता चढ़ी बैठी है। निरूढ़ेन ममत्वेन क्यों आसक्त हो गया, उनका अंतःकरण में ममता बैठी है। ध्यान देना चाहिए, बीमारी बाहर नहीं है, बीमारी हमारे अंतःकरण में है। ममता, ममता शब्द का अर्थ समझते हैं क्या है, अटैचमेंट, अंग्रेजी हम नहीं जानते। एक शब्द के लिए दूसरा शब्द कहना, ममता माने क्या है, हाँ ममता माने किसी वस्तु को अपना मान करके उसके प्रति आसक्त हो जाना, उसी का नाम है ममता। संस्कृत व्याकरण में हमने पढ़ा था, मम शब्द में टाप प्रत्यय होकर के ममता शब्द बनता है और भाववाच्य में टाप का प्रत्यय है, ममता आकार हो गया, मम आकारता ममता हो गया। इसका अर्थ होता है भाववाच्य माने ये वस्तु हमारी नहीं है, केवल मान्यता मात्र है। ध्यान देना चाहिए ममता शब्द का ठीक ठीक अर्थ क्या है, ये वस्तु हमारी हो ही नहीं सकती है। ध्यान देना चाहिए, जो आएगा सो अंतम बंतम इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरण, जो बना वो टूटेगा, जिसने ट्रेन पे चढ़ा उसको उतरना पड़ेगा, कोई आज तक ट्रेन में नहीं चढ़ा कि हमेशा रहने के लिए। कितना सरल प्रिंसिपल यह है, जो हमारे पास आया है वो जाएगा और जो नहीं आया वो नहीं जाएगा, इसी प्रिंसिपल में हिसाब करो, ममता कट जाएगी। ममता माने वो वस्तु हमारी वस्तुतः नहीं है। किसकी वस्तु है, प्रभुपाद जी कहते हैं धन किसका है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रद्ध कश्य श्रीधनम। अरे भाई, भोग करने से पहले पूछो ये धन है किसका। इसलिए धन जिसका है उसके लिए ममत्व शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वो अपना ही है। हमारे लिए ममता शब्द क्यों प्रयोग होगा, क्योंकि हमारा वो धन नहीं है। कहां तक है, हमारा शरीर हमारा नहीं है। भगवान कहते हैं कर्ता अहम इति मन्यते। समीकरण वहां से करना पड़ेगा, कर्ता अहम इति मन्यते। वो कर्ता है ही नहीं, वो केवल मानता मात्र है, उसकी मान्यता है। मान्यता कभी भी कट सकती है। इस्कॉन का इंचार्ज ऑलवेज इन डिस्चार्ज, ये हमारा मंत्र है। मान्यता मात्र है, आप एचओडी हो, कभी भी कुर्सी खिसक सकती है तुम्हारे नीचे से। ममता नहीं करना, वो तुम्हारी कुर्सी नहीं है। कितने आए और कितने गए, हाँ जी, ये पटना में कितने आए कितने गए, वृंदावन में कितने आए कितने गए, कई, जो आया सो जाएगा, सब जाएंगे। इसलिए इसका नाम है ममता। ममता माने झूठी आसक्ति है, ये सच्ची आसक्ति। सच्ची आसक्ति तो बहुत अच्छी बात है।
जीबेरा स्वरूप कृष्ण
क्या
दास अभिमान देह आच्छादित हया रहस्य ही ज्ञान।
दो जगह में जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, पर जीवेर स्वरूप कृष्ण दास अभिमान, कृष्ण के प्रति आसक्ति तो बहुत अच्छी बात है, यह असली है। वहां पर ममता नहीं कहा जाए, ममता कहो तब भी ठीक रहेगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, वहां भी ममता शब्द का है, लेकिन वो असली है, वो नकली नहीं है। यहां तो बिल्कुल मान्यता मात्र है, बेकार है ये। इसलिए बार बार कहते हैं निरूढ़ है ना ममत्व है ना, वो ममता चढ़ बैठिए विषयेषु अनुबद्धता, विषयों में फंस गया। अनुबद्धत माने देखना है, देखने के लिए चला बंद गया। सूंघना है, सूंघने के लिए चला बंद गया। सुनने के लिए चला बंद गया। टेस्ट करने के लिए चला बंद गया। स्पर्श के लिए चला बंद गया। सब जगह अनुबद्धता चारों ओर से बंध गया, अथवा बंधन उसका पीछे पीछे है। उर्दू भाषा में ये बहुत अच्छा शब्द है, बंदा, बहुत अच्छा है। बंध जाता है व्यक्ति, चारों ओर बंधन है, बंधन। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये बंधन है, ये देह में इसमें। लेकिन मेरे मित्रों ये बताओ, ये सारी बातें जो बंधन हम पढ़ते हैं, ये किसकी चाल है, किसके द्वारा ये बंधन संभव हो रहा है, क्या कारण है? इतने जान करके भी हम यहां इसको तोड़ नहीं पाते, क्या कारण, क्यों नहीं तोड़ते हैं? अथवा इसमें हमारा कितना रोल है, भगवान का कितना रोल है? हम बंधन को तोड़ दें, अगर हमसे टूट जाता तो आज तक हम बंधे क्यों है? अगर भगवान को बंधन तोड़ देना है, फिर हम बंधन में पड़े क्यों? एक समस्या है ना। और इस ये ममता के कारण प्रभुपाद लिखते हैं, वो तो कितना सपना देखता है, इतना धन आया, इतना आएगा, इसको मारा, उसको मारूंगा, हम सुखी सिद्धो, हम बलवान सुखी, आढ्यो भी जनवान अस्मि कोनोस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है? कोई नहीं है। आढ्यो भी जनवान अस्मि, भाई हम पूज्य है, हमारी पूजा होनी चाहिए, माला डलनी चाहिए। हाँ, अढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे बराबरी का कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। दूसरे दिन देखो हॉस्पिटल में दाखिला, कितनी बेवकूफी है ये। तो इसमें से हमारा क्या रोल है, अथवा ये बंधन हुआ तो कहां से हुआ, किसने हमको भाई डाल दिया, क्या कारण है? प्रत्येक व्यक्ति को आत्मानुशीलन करना चाहिए कि इसका कारण क्या है। बताओ, आप बंधन तोड़ सकते हो? तोड़ दोगे? अच्छा, जय राधे।
पर बैंक में तो बैलेंस है ना 50 लाख, बैंक में तो कई लाख है। चलो बहुत 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 बढ़िया भाई, ऐसे ऐसे तोड़ दिया करो। अच्छी बात है वैसे, ये तो एक बात है, धीरे धीरे करके इसको शिक्षा ले लेनी चाहिए कि बंधन हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हुआ। वास्तव में इसका एक ही कारण है, वो है कृष्ण। उन्हीं की शक्ति से हम बंध है, आप तोड़ नहीं सकते हो। अतिशय प्रबल नाथ तोरी माया, सुग्रीव जी कहते हैं अतिशय प्रबल नाथ तब माया, छूटई राम करहूं जो दाया। हे प्रभु, आपकी माया अतिशय प्रबल है, वो तब छूटेगी जब आपकी दया होगी। आप ऐसी तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आपके अधीन माया नहीं है, माया के अधीन हम है। देखो चाहिए भगवान की तीन शक्तियां जो हैं, हम आगे तटस्थ शक्ति में, कृष्णेर स्वरूप तार शक्तित्रय ज्ञान, जार हय ताते कृष्णे नहीं ताहते, जार हय कृष्णे नहीं ताहर अज्ञान। कृष्ण के तीन शक्तियों के बारे में, स्वरूप के बारे में जिसका ज्ञान हो जाता है, फिर कृष्ण के बारे में उसकी अज्ञानता नहीं रहती, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अब हम हो गए तटस्थ शक्ति, हमारे पास और कितनी शक्ति बची? दो शक्ति, कौन कौन है? बहिरंगा और अंतरंगा। तो दोनों शक्ति किसकी है? कृष्ण की है। अच्छा, जहां तक बहिरंगा शक्ति की बात है, अभी हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है या अंतरंगा शक्ति में चले गए? हाँ जी, बहिरंगा शक्ति में। अब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? हैं? ऑप्शन एक ही है, एक ही मार्ग बचा है बस। माया में तो है ही, ब्रह्मांड भ्रमित कौन, नहीं वो श्लोक नहीं है, वो प्यार नहीं है, जो उसको डुबाते हैं ना वो नदी में, वो भव नदी में वो माया डूबाती है बस, कभी ऊपर कभी उठाए, कभी नदी ते चुबाए, दंड्य जने राजा जने नदी ते चुबाए। माया डुबाती है, उठाती है, तो अभी तो है ही माया के अंदर, बस एक ही मार्ग बचा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुम्हारे लिए सेकेंड ऑप्शन कुछ नहीं है, देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। जो है यहां तो इसको छोड़ दो, इसी का नाम है वैराग्य, छोड़ना, और वहां जाना उसी का नाम है भक्ति, और उसी के साथ साथ ज्ञान। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। वैराग्य के लिए प्रयास करना, बंधन तोड़ के लिए प्रयास करना बेवकूफी है, तुम कर नहीं सकते ना। इसलिए भगवान यहां भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। प्रयोजित शब्द का अर्थ होता है पूरे पूरे प्रयास के साथ, मन बुद्धि लगा करके, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात करोति यदजत सकलम परस्मयी नारायणायति समर्पित। भक्ति योग है, यही भागवत धर्म है। जैसे सब प्रकार से हम भक्ति करते हैं तो वैराग्य ऑटोमेटिकल होगा। मान लीजिए हमारी आयु 60 मिनट की है, उदाहरण के रूप में 60 मिनट की आयु बची है, और आपने प्रत्येक मिनट में नाम लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, तो 60 मिनट आपके नाम से पूरे हो गए, उसी में वैराग्य है, उसी में ज्ञान है। नाम ले रहे हैं, संसार की याद ही नहीं है, यही नाम स्मरण ही ज्ञान है। चक्रवर्ती कहते हैं नाम लेना ही ज्ञान है। यदि 60 मिनट ले गए, जो बच्चा उद्यमी है उसी को वैराग्य का पाठ पढ़ाया जाता है,
वहां मत जाना, वो पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है। इसलिए पुरंजन राजा को समझाया जा रहा है, भक्त में तो स्वतः वैराग्य है। भक्ति परेशान भवूर विरक्ति अन्यत्र चैसा त्रिक एक काल, एक काल एक टाइम में, ऐसा नहीं कि एक मिनट के बाद वो आएगा, दो मिनट के बाद वो आएगा, नो, जो ही भक्ति करेंगे उसी के साथ वैराग्य, उसी के साथ ज्ञान। और जो भक्ति नहीं करता है उसके लिए ये सारी बातें, पुरंजन भक्ति नहीं करता था, प्राचीन भरी भक्ति मार्ग के नहीं थे, वो कर्मकांड के मार्ग में थे, उनका मन भटका हुआ था, इसलिए उनको वैराग्य का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हमारे लिए शुद्ध भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आप जब 10 अपराध पढ़ेंगे हमारी समझ में आती है, उसमें से कई अपराध हमसे होते नहीं है। ब्रह्मा शिव आदि को वो मानना, स्वतंत्र मन, अरे ब्रह्मा को ही नहीं जानता व्यक्ति, शिव को नहीं जानता, भेद क्या करेगा, वेद कभी पढ़ा ही नहीं होती, निंदा क्या करेगा। कई एक बातें हैं आप देखोगे तो सारी समस्या की जड़ें जो है वो 10वां अपराध है। क्या है? ध्यान पूर्वक नाम जप न्या कर। और नाम जप यदि एक बार ध्यान पूर्वक हो जाए फिर वैराग्य उसमें सिद्ध है, वैराग्य सिद्ध है। आपको वैराग्य के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा, बंधन के लिए, बंधन को काटने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जिसका बंधन वही काटेगा। मामेव यो प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, भाई मेरी शक्ति है तू कैसे काट सकता है। इसलिए पागलपन की आवश्यकता है इसमें, भक्ति में पागलपन, भक्ति में दृढ़ता। जैसे ये निरूढ़ ममत्व है ना इसमें विषयों में, वही विषय यदि वही भक्ति में यदि मन हो जाए ना, ममता हो जाए, फिर काम अच्छा बन जाए। महाप्रभु ने तो इसी को सिखाया था, जब मंत्र की प्राप्ति हो गई थी, मंत्र दीक्षा हो गया, तो महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे, जपते जपते उनके शरीर में एक विकृत लक्षण प्रकट होने लगा। विकृत तो नहीं है, अष्टांग अष्ट सात्विक विकार, पागलपन, गला गदगद हो जाना, रोमांचित हो जाना। तो महाप्रभु ने सोचा कि ये पागलपन है। महाप्रभु बड़े विद्वान थे, निमाई पंडित गौरांग मिश्र। गौरांग मिश्र कौन है? गौरांग मिश्र को जानते हैं? गौरांग मिश्र, गौरांग मिश्र कौन है? कहां के रहने वाले? जगन्नाथ मिश्र के लड़के मेरे भाई, गौरांग मिश्र निमाय पंडित, बड़े अभिमानी थे। जो भी हो, एक बार मुकुंद, हाँ बड़े अभिमानी थे वो, अरे ये पता नहीं है, बड़े अभिमानी थे, हरे हमेशा छेड़ते थे, जो भी उनके पास जाता था उनको छेड़ते थे। उनको देख करके मुकुंद वगैरह तो साइड मार के जाते थे, अभी छेड़ेगा, पूछेगा कोई व्याकरण का सूत्र पूछेगा, कोई पूछ, फिर बोलेगा क्या करते हो, ये नहीं आता, वो नहीं आता, कौन जाए उसके साथ तर्क वितर्क करने के लिए। स्नान करने के घाट में अगर मुकुंद के साथ मुलाकात हो जाए ना, वो साइड मार के जाए। तो एक बार साइड मार के मुकुंद जा रहे थे, महाप्रभु ने कहा अच्छा वैष्णव होने का तुम्हारे में अभिमान है, ऐसा देखना मुकुंद, एक दिन हम ऐसा वैष्णव होंगे संसार हमारी जय जयकार करेगा। बोलिए गौरांग महाप्रभु की। हाँ, उन्होंने मुकुंद को चैलेंज दिया था, हम एक ऐसा वैष्णव बना बन के दिखाएंगे। मुकुंद के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, भाई कैसे भी तू वैष्णव बन जा, वैष्णव बन। तो दीक्षा वगैरह हो गई, तो जब गुरु ने मंत्र दिया, मंत्र को महाप्रभु बड़े पंडित थे, हाँ अब सीरियसली जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, आठ दिन जपने के बाद कुछ विशेषता होने लगी, कुछ हलचल हुआ मन में, कुछ शरीर में कुछ ना कुछ विकार होने लगे। तो महाप्रभु ने कहा कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल। गाओ, मैं ही गाऊंगा, तुम सुनोगे, तुम भी गाओ। किबा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल,
मृदंग बजाओ ना, मृदंग मृदंग जिसको आता है,
किवा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल।
तो सारे बेरसी के हो लगता है।
अरे इस यही तो मंत्र है, किवा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल।
जोर से गाओ,
जपिते जपिते मंत्र करीला पागल, किवा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करील पागल, जपिते जपिते मंत्र हसाय नाचाय कभू करान क्रंदन, हसाय नाचाय कभू एत सुनी गुरु मोरे बोलील बचन, एत सुनी गुरु मोरे बोलील बचन। कृष्ण नाम महामंत्रेर यही त स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्रेर जय जपे कृष्ण तारे उपूजय भाव, जय जपे कृष्ण तारे।
सीधा सा अर्थ है, बिल्कुल राजमार्ग है। हे गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र दे दिया है जिसका जप करने से मेरा मन बोरा हो गया, पागल हो गए? पागलपन, पागलपन भी, दुनिया पागल है। पागल को पागल से ही काटा जा सकता है, कंटके नहीं वो कंटकम। हाँ, इस संसार में मेरे मित्रों, जब व्यक्ति पागल होता है, भौतिक नियम उस पर, इंसान का कानून उस पर नहीं लगता। ऐसा जब आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति पागल होता है, प्रकृति का नियम उस पर नहीं लगता, वो प्रकृति के पार चला जाता है। यही नियम है, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जपिते जपिते मन मंद हईल पागल, मैं पागल बन गया। गुरु ने कहा, बेटा बहुत अच्छी स्थिति तुम्हारी है, बिल्कुल फॉर्म तुम्हारा गुड है, अब जाओ प्रचार करो। एतवली एक श्लोको सिखाईला मोरे, भागवतीर सार यही बोले बारे बारे। ये कह करके बोले, बेटा ये श्लोक केवल हम नहीं कह रहे, ये भागवत का सार है। कौन सा श्लोक है?
एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चेत उच्चे हसत्यति रोदति रौति गायति उन्माद बतन त्यति लोक बाह्य।
लोगों को हटाना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप हट जाएंगे। लोक बाह्य, संसार क्या कहता है क्या कहेगा उसे परवाह नहीं। व्यास भरोसे कुमारी को सोवत पाप पसा, दुनिया क्या कहेगी हमारे बारे में कौन सुनता है भाई? दुनिया किसी को छोड़ती है क्या? किसको नहीं छोड़ती, किसी को छोड़ेगी नहीं, उसकी आदत ऐसी है। इसलिए बेटा, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुराग द्रुत चित्त उच्च ही। जब व्रत पूर्वक नियम निष्ठा पूर्वक व्यक्ति नाम का जप करता है, भवबंधन उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, उसको काटने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, भोजन के एक एक कोर के साथ उसकी तुष्टि पुष्टि और क्षोधा के निवृत्ति हो जाती है, उसमें समय का अंतराल नहीं है। वैसा ही तीव्र भजन के साथ यदि हम भजन करते हैं तो हमारे में वैराग्य स्वतः सिद्ध है, हमारे में ज्ञान स्वतः सिद्ध है, यही भाव है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चित्त उच्च ही। आपको अगर हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा नहीं लगता है, अब राम शरणम गाओ। आपको अगर कृष्ण अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण थोड़ा टेढ़ा है, क्री क क क समझ रहे हैं ना, का कितना टेढ़ा है, ऐसा ही टेढ़ा है, ऐसा ऐसे, फिर उसके नीचे री, फिर सा, फिर पेट काटो, फिर ण, कितना टेढ़ा है। आदमी जैसा उसका नाम भी वैसा ही है, कृष्ण, लेकिन राम बिल्कुल सीधा है। आपको अगर कृष्ण से एलर्जी है तो राम को। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्ति, अपने प्रिय नाम को यदि हम प्रियत्व के साथ व्रत पूर्वक निष्ठा पूर्वक हम जप करते हैं, हमारा चित्त विगलित होगा,
चित्त काठिन्य है जो पाषाण हो गया है, वो पाषाण नहीं रहेगा, वो पतला हो जाएगा, वो पानी हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसमें फिर छाप लगेगी भक्ति की। फिर तुम्हारा हमारा चित्त पिघल गया, क्या प्रमाण है? कब रोना है, कभी हंसना है, कभी रोना कभी हंसना, यही चाहिए बेटा, यही पागलपन हमें चाहिए। इसलिए ये बंधन के बारे में कहा गया, ये विषय में बंधन है, सैव साधु सुकृतम मोक्ष द्वारम अपापृतम। वही बंधन यदि, वही आसक्ति भगवान के भक्तों में, भगवान में हो जाए, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति इति उच्यते प्रह्लाद उद्धव आदि भीष्मय, भीष्म प्रह्लाद उद्धव, भीष्म प्रह्लाद उद्धव जी ने कहा कि भक्ति का अर्थ होता है अनन्य ममता विष्णु के प्रति। अगर ममता हो जाए भगवान के प्रति, हमारा बंधन कट जाएगा। अब समस्या यही कि हम कितना आगे जाए, वो कितना आए, नहीं, हमको केवल भक्ति करनी है। वैराग्य वैराग्य बाद की बात है, यदि हम निश्चल निरपराध भाव से निरपराध है नाम ले ले प्राय प्रेम धन, और जहां प्रेम है वहीं वैराग्य है, जहां वैराग्य है वहीं ज्ञान है। इसलिए इस श्लोक का जो भावार्थ है, गहरा अर्थ है कि हम पैसा को बर्बाद ना करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति में खर्च करें, यही अर्थ का प्रयोजन है। यदि भगवान के कृष्ण की कृपा से आपको धन की प्राप्ति हुई है, महल मंजिल बनाने के बजाय अपनी भक्ति में लगा दें, भक्ति जैसे ही सुविधा सुलभता पूर्वक हो जाए, फिर वो धन की सार्थकता है। ये भेड़िया भेड़िया नहीं लेंगे, तुम्हारा धन भगवान के लिए खर्चा हो जाएगा। हरे कृष्णा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय।